ये रेडियो नेपाल है। अब रमिता यादव से सुनिए हिंदी में समाचार। आरंभ में मुख्य समाचार। प्रतिनिधि सभा में सरकार के आगामी आर्थिक वर्ष 2082-83 के बजट पर विचार विमर्श शुरू। देश द्वारा सामना की जा रही आर्थिक चुनौतियों का समाधान करने के लिए बजट लाया गया है, उप प्रधान एवं अर्थ मंत्री विष्णु पौडेल का कथन। राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति की रिपोर्ट सहित संघीय निजामती सेवा संबंधी विधेयक प्रतिनिधि सभा में पेश। लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए कर्मचारियों को नागरिकों का दिल जीतना होगा, राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल का कथन। और भारत के उत्तराखंड राज्य के केदारनाथ मंदिर से लौट रहे हेलीकॉप्टर दुर्घटना में बालक सहित 7 लोगों की मौत। अब समाचार विस्तार से। प्रतिनिधि सभा की आज की बैठक में सरकार के आगामी आर्थिक वर्ष 2082-83 के राजस्व और व्यय के वार्षिक अनुमान बजट पर विचार विमर्श शुरू हुआ है। राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी और राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी के सांसदों के विरोध के बीच प्रतिनिधि सभा की आज की बैठक में आगामी आर्थिक वर्ष 2082-83 के राजस्व और व्यय के वार्षिक अनुमान बजट पर चर्चा शुरू हुई। प्रतिपक्षी दलों ने विजिट वीजा प्रकरण की जांच और गृहमंत्री रमेश लेखक के इस्तीफे की मांग करते हुए प्रतिनिधि सभा की बैठक को लगातार बाधित किया, जिसके कारण संघीय संसद में जेठ 15 को पेश किए गए बजट पर सैद्धांतिक चर्चा आज से ही शुरू हो पाई। बैठक में राजस्व और व्यय के वार्षिक अनुमान बजट पर चर्चा करने का प्रस्ताव रखते हुए उप प्रधान एवं अर्थ मंत्री विष्णु प्रसाद पौडेल ने कहा कि देश की आर्थिक चुनौतियों को दूर करने और अर्थव्यवस्था को सही दिशा देने के लिए ये बजट लाया गया है। अर्थमंत्री ने कहा कि अर्थव्यवस्था के संकेतक सुधार की ओर है, लेकिन चुनौतियां अभी भी बनी हुई हैं। उन्होंने बताया कि बजट में अर्थव्यवस्था को गतिशील बनाने और राष्ट्रीय आय बढ़ाने पर जोर दिया गया है। उन्होंने ये भी कहा कि चालू आर्थिक वर्ष की तुलना में आगामी आर्थिक वर्ष के बजट का आकार 5.5% बढ़ाया गया है और कुल बजट सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 28% है। बैठक के दौरान राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के सांसदों ने विजिट वीजा प्रकरण में गृहमंत्री के इस्तीफे की मांग करते हुए नारेबाजी जारी रखी। प्रतिनिधि सभा की आज की बैठक में संघीय निजामती सेवा संबंधी समिति का प्रतिवेदन पेश किया गया। राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति के सभापति राम हरि खतिवड़ा ने संघीय निजामती सेवा संबंधी समिति का प्रतिवेदन 2082 पेश किया। समिति की रिपोर्ट पेश करते हुए राज्य व्यवस्था समिति के सभापति खतिवड़ा ने बताया कि सांसद दिलेंद्र प्रसाद बड़ू की अध्यक्षता वाली उप समिति में लंबी चर्चा के बाद 2 साल के कूलिंग ऑफ पीरियड का प्रावधान सहित विधेयक को अंतिम रूप दिया गया है। प्रतिनिधि सभा की अगली बैठक कल आषाढ़ 2 गते सोमवार सुबह 11 बजे के लिए बुलाई गई है। सभामुख देवराज घिमिरे ने आज संसद में जारी गतिरोध के संदर्भ में राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के कार्यवाहक अध्यक्ष डीपी अर्याल और राप्रपा के अध्यक्ष राजेंद्र लिंगदेन के साथ अलग अलग वार्ता की। वानेश्वर स्थित अपने कार्यालय में रासोपा के नेता अर्याल के साथ हुई बातचीत में सभामुख घिमिरे ने कहा कि संवैधानिक प्रावधानों के कारण बजट पर चर्चा शुरू करना अनिवार्य है। उन्होंने विपक्ष से अवरोध के तरीके को बदलने और सदन को मर्यादित बनाने का आग्रह किया। रासोपा के नेता अर्याल ने स्पष्ट किया कि उनका विरोध जारी रहेगा, लेकिन साथ ही संसद को सुचारू बनाने की प्रतिबद्धता भी जताई। गत शुक्रवार को हुई अव्यवस्था के बाद आज सुबह की बैठक में प्रमुख सचेतकों ने सभामुख का ध्यान संसदीय मर्यादा भंग की ओर आकर्षित किया था। सभामुख ने राप्रपा के अध्यक्ष लिंगदेन से फोन पर बात करते हुए संवैधानिक जिम्मेदारियों की याद दिलाई। सभामुख सचिवालय के अनुसार उन्होंने अपने मुद्दों को संसद में रखते हुए सदन का कार्य सुचारू करने में सहयोग का अनुरोध किया। संसद में बजट चर्चा को लेकर गतिरोध जारी है, लेकिन सभामुख के हस्तक्षेप से जल्द ही समाधान की उम्मीद की जा रही है। राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने जनता को महसूस होने वाला लोकतंत्र बनाने पर जोर दिया है। लोक सेवा आयोग के 75वें वार्षिकोत्सव एवं हीरक जयंती समारोह को आज संबोधित करते हुए राष्ट्रपति पौडेल ने कहा कि लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए कर्मचारी तंत्र को नागरिकों का दिल जीतना होगा। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि जब तक कर्मचारी तंत्र नागरिकों को उनके अधिकारों तक आसान पहुंच प्रदान नहीं करती, तब तक लोकतंत्र मजबूत नहीं हो सकता। समारोह को संबोधित संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने कहा कि लोक सेवा आयोग ने निष्पक्षता बनाए रखकर जनता का विश्वास अर्जित किया है। प्रधानमंत्री ने आयोग द्वारा योग्यता, निष्पक्षता और पारदर्शिता के साथ नागरिक प्रशासन, सुरक्षा निकायों और अन्य संगठित संस्थानों में पदों की भर्ती में दिए गए योगदान की सराहना की। लोक सेवा आयोग की हीरक जयंती के अवसर पर आयोग में उत्कृष्ट सेवा देने वाले वर्तमान एवं पूर्व कर्मचारियों को सम्मानित भी किया गया। आप रेडियो नेपाल से हिंदी समाचार सुन रहे हैं। बस थोड़ी देर विज्ञापन।
ए छोरा, के छ हाल खबर? पढाई कस्तो चल्दैछ?
सबै राम्रै चल्दैछ। अनि त्यहाँ के छ बुवा?
यहाँ पनि सबै राम्रो छ। ला, तेरो आमासँग कुरा गर।
पर्दैन पर्दैन, किन धेरै पैसा खर्च गर्नुहुन्छ?
किन टेन्सन लिन्छस् बाबु? हामी जस्ताको लागि एनटीसी को कल इन्डिया प्याक छँदैछ नि। इन्डिया कल गर्न त कस्तो सस्तो पो छ त त्यसमा।
ल त्यसो भए ढुक्कले कुरा गरौँ न त।
सेवा सुचारू गर्नका लागि *1415# गर्नुहोस्।
नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको संचार।
अब बाकी समाचार। मेची राजमार्ग अंतर्गत पांचथर की हेबा नदी में निर्माणाधीन बेली ब्रिज के टूटने से हुई दुर्घटना में घायल हुए 3 मजदूरों की बीती रात मौत हो गई। बेली ब्रिज के टूटने से घायल हुए 12 की सिमरा उपमहानगरपालिका वार्ड नंबर 12 के रूपलाल चौधरी, 27 वर्षीय राजन चौधरी और 22 वर्षीय राकेश चौधरी की हुई मौत की जानकारी जिला प्रहरी कार्यालय पांचथर ने दी। आज प्रदेश सरकारों ने आगामी आर्थिक वर्ष 2082-83 के लिए बजट अपनी अपनी प्रदेश सभा में पेश किए। कोशी प्रदेश सरकार ने आगामी आर्थिक वर्ष 2082-83 के लिए 35,87,99,00,000 रुपए का बजट साझा किया है। इसी तरह गंडकी प्रदेश सरकार ने 31,97,99,99,000 रुपए का बजट सार्वजनिक किया है। वहीं लुम्बिनी प्रदेश सरकार ने 38,91,00,000 रुपए का बजट प्रस्तुत किया है। इसी तरह मध्य प्रदेश सरकार ने आगामी आर्थिक वर्ष 2082-83 के लिए 46,58,33,51,000 का बजट सार्वजनिक किया है। नेपाल टेलीकॉम सोमसोम ने मुस्तांग और डोल्पा के सीमावर्ती गांव संगता में संचार की पहुंच स्थापित की है। मुस्तांग और डोल्पा की सीमा के नजदीक स्थित विकट बस्ती सांगता गांव का पता संघीय सरकार को सन 2022 में चला था। जोमसोम से करीब 40 किलोमीटर दूर स्थित इस गांव में 13 परिवार रहते हैं। मुस्तांग और डोल्पा में सड़क विस्तार और सौर ऊर्जा की पहुंच के साथ ही मोबाइल नेटवर्क सेवा शुरू होने से दैनिकी सहज होने की बात से यहां के बासिंदे उत्साहित हैं। नेपाल के पहले छात्र आंदोलन जयंतु संस्कृतम की ऐतिहासिक घटना की याद में आज विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। वर्ष 2004 विक्रम संवत के आषाढ़ एक यानी आज के दिन को तीन धारा पाठशाला के छात्रों ने राणा शासन के खिलाफ आंदोलन किया था। छात्रों की मांग थी कि संस्कृत के शास्त्रीय विषयों के साथ साथ आधुनिक अंग्रेजी, गणित, विज्ञान और भूगोल जैसे विषय भी पढ़ने को मिले। ये आंदोलन नेपाल में शिक्षा सुधार की दिशा में एक मील का पत्थर साबित हुआ। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। भारत के उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में आज सुबह एक हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। हेलीकॉप्टर श्री केदारनाथ धाम से यात्रियों को वापस अपने गुप्तकाशी बेस पर ला रहा था। इस हेलीकॉप्टर में 6 वयस्क और एक शिशु सवार थे। हेलीकॉप्टर क्रैश होने का कारण घाटी में अचानक मौसम खराब होना बताया जा रहा है। उत्तराखंड SDRF ने इस क्रैश में 7 लोगों की मौत की पुष्टि की है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस हादसे पर दुख जताया है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट करके कहा, जनपद रुद्रप्रयाग में हेलीकॉप्टर के दुर्घटनाग्रस्त होने का अत्यंत दुखद समाचार प्राप्त हुआ है। पुष्कर सिंह धामी ने बताया कि राहत बचाव कार्य में SDRF और स्थानीय प्रशासन लग गया है। इसके साथ ही उन्होंने लिखा, बाबा केदार से सभी यात्रियों के सकुशल होने की कामना करता हूं। अब मौसम। अगले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 27 से 29 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 18 से 20 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहने की संभावना है। पिछले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 28.2 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 20.8 डिग्री सेल्सियस रहा। अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रतिनिधि सभा में सरकार के आगामी आर्थिक वर्ष 2082-83 के बजट पर विचार विमर्श शुरू, देश द्वारा सामना की जा रही आर्थिक चुनौतियों का समाधान करने के लिए बजट लाया गया है। उप प्रधान एवं अर्थमंत्री विष्णु पौडेल का कथन। राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति की रिपोर्ट सहित संघीय निजामती सेवा संबंधी विधेयक प्रतिनिधि सभा में पेश। लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए कर्मचारियों को नागरिकों का दिल जीतना होगा, राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल का कथन। और भारत के उत्तराखंड के केदारनाथ मंदिर से लौट रहे हेलीकॉप्टर दुर्घटना में बालक सहित 7 लोगों की मौत। रेडियो नेपाल से प्रसारित रात 10 बजे के हिंदी समाचार समाप्त हुए। रात 11 बजे आप सुनेंगे नेपाली में समाचार। नमस्कार, शुभरात्रि।